نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فاسأل به خبيرا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آله. حرف و ہوا دل کے اندر، حرف و ہوا دل کے اندر، مکر و فریب دغا دل کے اندر، نہیں اس زمانے میں کیا چیز دل کے اندر، نہیں اس زمانے میں کیا چیز دل کے اندر، نہیں ہے تو بس خوف خدا دل کے اندر. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی عمدہ شعر ہے، کہ آج ہمارے دلوں میں سب کچھ بھرا ہوا ہے، کیا چیز نہیں ہے، جائز بھی چیزیں بھری ہوئی ہیں، ناجائز چیزیں بھی بھری ہوئی ہیں، حرام کی لذتیں بھی بھری ہوئی ہیں. نہیں ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، عشق نہیں ہے اللہ کا، آپ اسلم کی محبت کا درد نہیں ہے، ساری چیزیں ملیں گی دل میں، لیکن یہ چیزیں بہت مشکل سے خال خال کہیں کہیں ملیں گی. دھوکا ہے، فریب ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھری ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ملے گا، سیدھا سیدھا لوگوں میں ملے گا. تو یہ دل جو ہے، یہ سارا جو کھیل ہے، سارا جو زندگی ہماری جو قیمتی بنے گی اور جو قیمت لگتی ہے، وہ ہمارے دل کے حساب سے لگتی ہے. حضرت والا ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی بہت بڑا بکسہ ہے اور اس کے اندر جو ہے کوڑا کرکٹ، بچوں کے گندے پوتے پڑے ہیں، تو اس بڑے سے بکسے کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تالا لگائے گا، نہ اس کی کوئی حفاظت کرے گا، نہ اس پہ سیکورٹی متعین ہوگی، لیکن بکسے کی کوئی اہمیت نہیں، اندر تو کچرا اور گند بھری ہوئی، کیونکہ بکسے سے قیمت نہیں ہوتی، بکسے کے اندر کیا چیز ہے اس سے قیمت ہوتی ہے، تو اس اندر والی چیز سے بکسہ بھی قیمتی ہو جائے گا یا بے حقیقت ہو جائے گا، تو اس کے ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو پھر یہ مثال دے کے اپنے فرمایا، ایک چھوٹا سا بکسہ ہے، بڑا نہیں ہے، چھوٹی سی ڈبیا سمجھ لیں، اور اس میں ایک اصلی سچا موتی رکھا ہوا ہے چھوٹا سا، اب کیا ہوگا، اس چھوٹے سے ڈبیا کی یا چھوٹے سے بکسے کو کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اب اس کی بھی حفاظت کی جائے گی، اس پہ تالا لگایا جائے گا، گھر میں بھی چھپا کے رکھا ہو تو تجوری کے اندر لوگ رکھیں گے، ایسے ہی رکھیں گے جس طرح وہ بکسے کو رکھا ہوا تھا. کہیں بڑا تو ہوا ہی تو چھوٹا سا ہے، تو چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، اندر کیا مال بھرا ہوا ہے اس سے اس کی قیمت لگے گی، بڑا وہی ہے جس کے اندر مال قیمتی اندر ہو. حضرت نے فرمایا کہ وہ سچا موتی اگر رکھا ہوا ہے وہ اندر، تو پھر اس چھوٹی سی ڈبیا کی اور بکسے کی بھی حفاظت کی جائے گی، اس پہ تالا لگا کے رکھیں گے، اس کو کھلا نہیں چھوڑیں گے، پھر تجوری کے اندر بھی رکھیں گے چھپا کے کہیں، اور پھر تھوڑے تھوڑے عرصے میں اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے کہ اپنی جگہ پہ رکھا ہوا یا نہیں. تو فرمایا اسی طرح انسان تو سب ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، بہت ملیں گے، اس میں سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ کی نسبت حاصل ہے، اس میں انسان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور پھر مسلمان گناہگار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، پھر اسی طرح ایمان والوں کی بھی کیٹیگری کہلاتی ہے، اس میں متقی اللہ والے الگ ہیں، فاسق فاجر مسلمان الگ ہیں. تو حضرت فرما دیتے ہیں، لیکن جس پل کے اندر اللہ کی نسبت کا موتی پیدا ہو جاتا ہے، پھر بکسے کی بھی، یعنی اس کے پھر پورے جسم کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ورنہ پھر اس جسم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ پورا کرکٹ کے بھاؤ بکے گا. اب ایک مثال حضرت والا بھی دیتے ہیں، اللہ والے کیوں لوگ محبت کرتے ہیں، کیوں فدا رہتے ہیں ان پہ، ان کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے جسم کی اہمیت نہیں، ان کے جسم کی اتنی قیمت کیوں لگ رہی ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی وجہ سے، ان کے جسم سے ان کی جو چپلیں ٹچ ہوتی ہیں، بس ہوتی ہیں، تو ان چپلوں کی جو قیمت بھی بڑھ گئی، تو لوگ جوتیاں اٹھانا فخر سمجھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے، وہ قلب کے اندر نسبت معلّہ کا موتی قائم پیدا ہو چکا ہے، اس کے انورات اثرات پورے جسم میں، اور ان کے کپڑوں میں، ان کے جسم میں، ان کی جوتیوں میں، سب جگہ آ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کو تکیہ بنا کے سوتے تھے. یہ کہتے ہیں نا، جوتیاں اٹھانا کیا ہوتا ہے، وہاں سے چلا جائے، تو صحابی رسول کا عمل تھا، اور آپ خوش ہوتے تھے، आप सत्संग ये नहीं भरना, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुम बिदत कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, मेरी जुतियां क्यों उठाते हो। तो क्या कीमत थी आप सत्संग की, तो फिर उनके बुजुर्ग और फिर नबी और नबियों के सरदार और फिर अल्लाह से मुलाकात, फिर उनकी एक एक चीज में वो नूर आ गया था। अगर फरमाते थे कि अगर कीमती अपने जिस्म को बनाना है, अंडे पराठे खा के, मिरिंडा पी के, लस्सी दूध पी के जिस्म अच्छा नहीं होता, उसकी कीमत नहीं बढ़ती। फरमाया तो असल जो कीमती जिस्म बनेगा जब निस्बत माल्ला का मोती जब कल्ब के अंदर आ जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत खशियत इलाहियत का जब नूर कल्ब के अंदर आ जाएगा, फिर देखो तुम्हारी कीमत की, तुम्हारी कीमत क्या लगती है जमीनों में और आसमानों में। फिर जहां जाओगे लोग तुम्हें मोहब्बत से देखेंगे, बीच बीच जाएंगे। जरूरी नहीं है खिलाफत किसी को मिले, वो शेख साहब हो तो उनका ही मामला होगा, नहीं। खलीफा तो दुनिया में चंद होते हैं, खिलाफत जिनको मिली होती है तो क्या मतलब है, अल्लाह इतना महदूद कर देंगे। ये तो एक दुनियावी मनसब होता है जो शेख दे देता है। असल चीज निबत माल्ला का मोती के लिए बस तकवा चाहिए, चाहे वो मुरीद हो या गैर मुरीद हो, या आम मुसलमान हो या कोई शेख साहब हो। अगर वो शेख साहब भी है, खलीफा साहब भी है, अगर उनके अंदर तकवा नहीं है, निबत माल्ला की अगर मोती उनके कल पे नहीं है, तो उनकी पजीराई नहीं होगी। सिर्फ मनसब देख के कोई मोहब्बत इज्जत नहीं करता जी शेख साहब है, वो टाइटल जो होता है ना बस एक वक्त तक चलता है वो, लेकिन अगर अंदर माल नहीं है भरा हुआ तो फिर वो पजीराई नहीं मिलेगी, वो काम नहीं बनेगा। अगर कोई आम मुसलमान या कोई आम मुरीद अगर तकवा अख्तियार कर लेगा तो निस्बत माल्ला का मोती हासिल कर लेगा, अल्लाह के ताल्लुक का मोती, तो फिर उसकी कदर देखिए कैसी होगी। बड़े बड़े शेख शियों के पीछे रह जाएंगे, तो ये जहन से निकाल दें कि सिर्फ मशायख की इज्जत होती है। असल में होता है कि अक्सर जो मशायख होते हैं हमारे इलाके वो मुत्तकी होते हैं, तो इसलिए नूर आला नूर हो जाता है। तो बताने का मकसद है कोई भी हो, चाहे खलीफा हो या गैर खलीफा हो, असल जो चीज होती है वो ताल्लुक माल्ला का, निस्बत माल्ला का मोती हासिल करें तकवे की बरकत से, तो फिर देखें फिर एक एक चीज की अल्लाह पाक इंशाल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। तो ये दिल है ना, ये सारी मेहनत दिल पे ही मशायख करते हैं। हजरत हाजी नदुल्ला माजिर मक्की रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, हमारे सिलसिले में दिल पर ज्यादा मेहनत की जाती है, क्योंकि अगर दिल सही हो गया तो पूरा जिस्म सही हो जाएगा। और हमारे प्यारे आकिद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का खुलासा भी यही है, अल्लाह के वशी में फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक ऐसा अज़ू है, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म तुम्हारा सही है, अगर वो बिगड़ गया पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। क्या मतलब वो, और आखिर में इरशाद फरमाया वो है दिल। दिल अगर बिगड़ गया तो सोचने का अंदाज भी बदल जाएगा, अमाल गंदे होंगे, क्योंकि दिल की इस्लाह, दिल बिगड़ चुका, नंगी फिल्में देखेगा इंसान, माँ बाप से लड़ेगा, बीवी बच्चों की पढ़ाई करेगा, गालियां देगा, बाहर बड़ा बाखलाक बनेगा। ओहो लोग कहेगा जिससे वाला सूफी अल्लाह वाला बाखलाक कोई नहीं, और बीवी बच्चों के सामने देखे तो 100 जल्लादों के एक जल्लाद नजर आएंगे। इसी तरह बाहर कुछ अंदर कुछ, तो अमराज रजीला भरे हुए होते हैं। तो अब इनकी इसलाह कैसे होगी भाई, अब इसकी इसलाह कैसे होगी, तो यही दिल के अंदर ये सारी चीजें भरी हुई होती है, और यही उर्फ आम में जो है वो अमराज रजीला कहलाती है। तो ये जो अमराज रजीला जो कहलाते हैं वो यही तो कहलाते हैं कि दिल अभी बना नहीं, तो दिल पे वो होती थी हाजी साहब की बात हो रही थी, हाजी साहब की कहीं और था दिमाग आपका, कभी चेक भी करना चाहिए ना। ये भी खलीफा साहब है माशाल्लाह। तो बात हो रही थी कि हाजी रज़ुल्लाह माजिर मक्की रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, हमारे सिलसिले में दिल पर बड़ी मेहनत की जाती है, इस हदीस शरीफ के हवाले से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बस जब तक ये दिल सही होगा तो पूरे जिस्म सही रहेगा, हमारे जिस्म की आवाज सही रहेंगे, दिल अगर सही है तो अच्छे अच्छे माल होंगे, नेक माल होंगे, तक्वा भी नसीब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सारी मेहनत दिल पे की जो दिल की इसलाह हो गई। अगर दिल पर मेहनत नहीं करी, जाहिर माल पे अगर खाली मेहनत करी लेकिन असल महबर टारगेट दिल को अगर नहीं बनाया, तो फिर आदमी सारी जिंदगी ऐसी चलता है, आधा पीतर आधा बटेर, घड़ी में औलिया घड़ी में भूत, फिर तक्वा नसीब नहीं हुआ, कभी बैठ के तहज्जुद पढ़ेगा, खूब रहेगा कुरान जिक्र अज़कार, फिर मोबाइल लेके ऐसा बैठेगा कि फर्ज नमाज भी निकल के देखता रहेगा, 2-4-5-6 घंटे ऐसे निकल जाएंगे मोबाइल पे, नई चीजें देखता रहेगा, पता ना दिल तबाह बर्बाद है इसका। बीमार दिल की अलामत है, एक होता है बीमार दिल, एक होता है तगड़ा दिल, तो ये बीमार दिल की अलामत है। तो इसलिए अल्लाह वाले दिलों पर मेहनत करते हैं सबसे ज्यादा, 50 चीजों पर मेहनत नहीं करते। दिल की इसलाह होती है तो पूरा वजूद बेहतरीन शानदार हो जाता है बंदे का। बस एक टारगेट बना है, दिल को पाक करना है, किस चीज से, गैरुल्लाह से। हम सुनते तो हैं कि गैरुल्लाह 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 कहते किसे, अल्लाह के गैर को कहते हैं, अल्लाह के गैर से क्या मुराद, क्या बीवी गैरुल्ला है, क्या बच्चे गैरुल्ला है, पैसा कमाना, गाड़ी बंगला कोठी और नोट, ये सब क्या गैरुल्ला है, घूमना फिरना हंसना बोलना क्या गैरुल्ला? नहीं, ये गैरुल्ला नहीं, ये भी अल्लाह की ही मोहब्बत में सारी चीजें, अल्लाह के रास्ते की चीजें, और ये भी अल्लाह के लिए बाय से कुर्ब बनता है। ये सारी चीजें भी बीवी से मोहब्बत करना या सवाब है इसको, ये भी अल्लाह के कुर्ब का सवाब बनता है। तो गैरुल्ला किसे कहते हैं? हर वो चीज जो अल्लाह का गैर हो, यानी गैरुल्ला उसे कहते हैं जो जिसमें पढ़ के हम अल्लाह से गाफिल हो जाएं और अल्लाह को भूल जाएं, चाहे वो चीज जायज भी हो। सिर्फ गुनाहों की बात नहीं हो रही, अगर हलाल चीज है लेकिन उसमें हम इतना मुनामिक हो गए कि अल्लाह से दूर हो गए, तो फिर वो जायज चीज जो है हलाल चीज भी फिर वो हराम के दर्जे में चली जाएगी और वो गैरुल्ला बन जाएगी, और फिर ये मौत के वक्त फिर पता चलेगा कि फिर क्या मुंह से निकलता है हमारे। मिसाल के तौर पे एक सच्चे वाकयात में से एक नौजवान था, जब उसका इंतकाल होने लगा तो लोगों ने कहा भाई अब तुम कलमा पढ़ लो, वक्त आ गया तुम्हारा। उसने कहा 50 रुपए मीटर और मर गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग आए तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मामला है, मैं इसे कलमा पढ़ने की तलकीन कर रहा था और ये कह रहा है 50 रुपए मीटर। उसने कहा हुआ ये करता ये था कि इसकी दुकान थी कपड़े की, और 50 रुपए मीटर आवाज लगाता रहता था ये कपड़ा जब बेचता था, तो सामने मस्जिद थी तो लोग बोलते थे जब जाते थे नमाज पढ़ने, यार ठीक है कपड़ा बेच रहा हूँ मेरा 10 मिनट लगे नमाज तो पढ़ लो आगे, तो मजाक उड़ाता था, हाँ ठीक है तुम चलो मैं आ रहा हूँ, और फर्ज नमाज से निकालता रहता था और फिर ये आवाज लगाता रहता था 50 रुपए मीटर 50 रुपए मीटर। तो फिर हुआ क्या कि इसकी एक आदत थी नमाज नहीं पढ़ता था वो। अब कपड़ा बेचना कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है, जायज चीजें कारोबार करना, लेकिन इस तरह से कपड़ा बेचना है, को कारोबार करना जिसमें इंसान अपने फराइज वाजिबात से भी गाफिल हो जाए तो फिर गैरुल्ला बन जाएगा, और फिर बाप दो फिर अल्लाह का गजब इस तरह से नाजिल होता है क्योंकि घर में उसके दिल में अल्लाह नहीं बसा था, उसके दिल में तो नोट बसे हुए थे, कपड़ा बसा हुआ था फर्ज नमाजों को छोड़ के, तो फिर अल्लाह का गजब ऐसे नाजिल हुआ कि मरते वक्त अल्लाह ने उसका खात्मा खराब कर दिया। क्या मतलब कि अल्लाह की नाराजगी थी, जब सारी ए मेरे बंदे जब तूने सारी जिंदगी मेरा नाम नहीं लिया, तूने सजदा मुझे नहीं किया, तो नोट कमाने में लगा रहा, तुझे पैसों में पड़ा रहा, तू कपड़ा बेचने में लगा रहा, तो इस वक्त शॉर्टकट मत ढूंढ, अब ये मरते वक्त तू जल्दी से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तेरा खात्मा ईमान पर हो जाए, नहीं अब तेरे दिल से मैं वही निकलवाऊंगा, तेरे दिल में वही मुंह से निकलेगा, तेरे दिल में जो तेरे दिल में रचा बसा था वही मुंह से निकलेगा, तो फिर अल्लाह पाक फिर वही मुंह से निकलवाते हैं जिस पर मेहनत की थी, जो दिल में रचा बसा था तो फिर मुंह से वही निकलता। अभी हम सोचते हैं मरते वक्त कह देंगे जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये अभी हमें ऐसा लगता है, अभी हम 50 दफा कह सकते हैं। मरते वक्त के मामला जो होते हैं, जब बरज़खी हयात जब शुरू होने वाली होती है उस वक्त कंडीशन कुछ और होती है। कहते हैं सैकड़ों लोगों में से किसी एक का, एक के मुंह से कलमा शरीफ निकलता है, इतना आसान नहीं होता, अल्लाह जिस पर फजल फरमाए। तो इसलिए नबी पाक हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई कि ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जुबानों से मानूस कर लो ताकि वक्त रुखसत की आसानी से निकल जाए। ये हदीस शरीफ भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सिलसिले में ये 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का जो ये जिक्रुल्लाह कराया जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि इखलास से जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा दखल अल जन्ना, वो लाजमी तौर पर इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। तो सहाबा किराम ने पूछा या रसूल इखलास से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के क्या मतलब है, फरमाया कि इंसान हराम कामों से बाज आ जाए और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, ये है इखलास के साथ, तो दखल अल जन्ना जन्नत में जाएगा। लेकिन मुबारक है भाई, अगर अभी हराम कामों से आदमी बाज नहीं आए तो मायूस ना हो, कम से कम ये ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह करता रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम की बरकत से ये सारे गुनाह भी फिर छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आदमी मायूस हो जाए, गुनाह तो छूट नहीं रहा, क्या फायदा अल्लाह के जिक्र का, तो फिर आदमी अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे। हजरत ताला फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैहि, अरे जालिमो तुमने जो छोड़ने की चीज थी गुनाह को तो छोड़े नहीं, तुमने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया, ये तो और बवाल का अंदेशा है, छोड़ने वाली चीज नहीं छोड़ी गुनाह, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया। तो ये जो दिल जो है ये गैरुल्लाह से पाक करना है हमें, जीती जी मेहनत करनी है ताकि मरते वक्त खात्मा ईमान पर हो जाए, आसानी के साथ हमारी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए, और विलायत भी उस सूरत में आता होती है, निस्बत माल्ला का मोती भी अल्लाह पाक उस वक्त दिल में डालते हैं कि जब दिल गैरुल्लाह से पाक हो जाता है। फाजल साहब का दूसरा शेर याद आया, पहला शेर भी नहीं पता, दूसरा शेर फरमाते हो कि दिल से हर तमन्ना अब तो रुखसत हो गई, कि अल्लाह पाक दिल से कोई तमन्ना नहीं रही, जायज ना जायज, हराम गुनाह लज्जतें जितनी भी गंदी चीजें अच्छी चीजें भी जो जायज थी अल्लाह ने सब छोड़ दी, दिल को साफ कर दिया, दिल से हर तमन्ना रुखसत हो गई। अरे अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। क्या शेखाने गए, अल्लाह पाक अब तो आजा हमारे दिल में, अब तो खलवत हो गई, अब तो तन्हाई हो गई, अब तो इस दिल में कोई है ही नहीं। हसरतें पामाल हो या आरजूएं तबाह हो, हसरतें पामाल हो या आरजूएं तबाह हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। जो फाजल साहब का तीसरा शेर है, आरजूएं पामाल हो या हसरतें तबाह हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। अल्लाह, तो ये जो दिल जो है ना, इसको पाक करना है, ना कोई गैर आ जाए, ना कोई गैर आ जाए, ना कोई गैर आ जाए, ना कोई वसवसा आ जाए। हरीम अहमद तू अपने दिल का हर बर हर दम पासवा रहना। ख्वाजा शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमत अल्लाह फरमाते थे, ना कोई गैर आ जाए, थोड़ा सा मिसरा आगे पीछे हो रहा है, बारह समझ में आनी चाहिए, ना कोई गैर आ जाए, ना कोई राह पा जाए, याद आए, ना कोई गैर आ जाए, ना कोई राह पा जाए। हरीम अहमद तू अपने दिल का हर हर दम पासवा रहना। कि अहमद अपनी हजरत फरमा रहे मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमत अल्लाह, कि हर वक्त अपने दिल का मुहासबा रखो, कोई गैरुल्लाह मेरे अंदर घुस तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं मैं मोबाइल की लानत के अंदर पड़ गया हूँ और उसमें म्यूजिक गाने बजाने नाच गाना औरतें नई नई चीजें गंदी चीजों में देखता रहता हूँ, ऐसा तो नहीं मैं कोई अल्लाह ना करे बदनजरी करता रहता हूँ जब मैं बाहर निकलता हूँ। तो ये फरमा रहे हैं शाह मोहम्मद अहमद साहब, ना कोई गैर आ जाए, ना कोई राह पा जाए। हरीम दिल का यानी दिल के हरम का अहमद तू अपने हर दम पासबा रहना, यानी मुहाफिज रहना, दिल के नजर रखना दिल पे कड़ी। ये फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं है बेलगाम छोड़ दिए दिल को, बस जहां दिल जा रहा है बस उसके पीछे तकलीफ हो रही है दिल की। ना महरम से तकल्लुफी बरतना ए नासिर, ना महरम से तकल्लुफी बरतना ए नासिर, कहीं कहीं रोग ना बन जाएं ये दिल की दिल लगियां, कहीं रोग ना बन जाएं दिल की ये दिल लगियां। बाद लोग दिल लगिए की नहीं करते ना, चलो थोड़ी सी तफरी रहेगी। ये शेखुल हदीस हजरत मौलाना मंसूर अल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो तालिबन अमेरिका में शेखुल हदीस है मदरसे में, हजरत के खलीफा है और यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से, तो वो ये शेर क्या फरमा रहे हैं कि ना महरम से तकल्लुफ ही बरतना ए नासिर, कहीं रोग ना बन जाए दिल लगी है दिल का। क्या मतलब कि ये भी तो हंसी मजाक थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह चल रही है, तो ऐसा ना हो कि फिर दिल का रोग बन जाए। बाकी लोग कहते हैं मैं तो यार कुछ नहीं, बस ऐसी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, कोई बात नहीं भाई, अभी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है। और फिर हजरत का एक और शेर याद आया, हजरत फरमाते थे कि मोहब्बत बढ़ा के ना पिट जाइएगा, मोहब्बत बढ़ा के ना पिट जाइएगा, कि पिटने से पहले ही हट जाइएगा, कि पिटने से पहले ही हट जाइएगा। ना ना माने मीर तो फिर बहुत पछताइएगा, ना माने मीर तो बहुत पछताइएगा, लहू अपनी आंखों से फिर बरसाइएगा। पहले हंसाए फिर रुला दिया हजरत ने, सुनने वाला कलाम है, पढ़ा भी इंशाल्लाह कभी लाऊंगा, बहुत ही शानदार ये शेर है। तो ये मेहनत जो सारी चल रही है बुजुर्गों के अशआर सारी चीजें, कि दिल दिल में भर रही है, रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस शरीफ से सबने अखज की, दिल को पाक करना गैरुल्लाह से, बस क्या कोई गैरुल्लाह ना आ जाए, कोई गुनाह की चीज हमारे दिल के अंदर ना घुस जाए। बस जब दिल बहुत मुश्किल से बन पाता है दिल, ख्वाजा साहब का एक और शेर याद आया, ख्वाजा साहब के इशारे आ जा रहे हैं भाई, बहुत मुश्किल से दिल बन पाता है दिल, रगड़े लाख जब हजार खाता है दिल, ऐसे दिल नहीं बनता ही है, रगड़े लाख हजार खाता है जब दिल, उसके बाद दिल दिल बनता है। इसी तरह ख्वाजा साहब का एक और शेर याद आ रहा है कि बहुत गो वलवले हमें मजबूर करते हैं, ये अल्लाह पाक से कह रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारा भी दिल है, हम भी जज्बात रखते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है अल्लाह 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 वालों से ताल्लुक कायम कर लिए तो हमें नफ्स और शैतान तंग नहीं करते, या हमें खैरात नहीं आते, या हमारी ख्वाहिशात नहीं है। तो उसी शेर में फरमाते हैं ख्वाजा साहब अपनी कैफियत को कि बहुत गो वलवले हमें मजबूर करते हैं, तेरी खातिर गले का घोटना मंजूर करते हैं, तेरी खातिर गले का घोटना मंजूर करते हैं। कि हमारे दिलों में बहुत ख्यालात आते हैं कि गुनाह करें, ये करें, वो करें, हमें मौके भी मिलते रहते हैं, लेकिन नहीं, तेरी खातिर गले का घोटना मंजूर करते हैं, यानी ख्वाहिशात को कुचलते रहते हैं। कोई अपना गला ना घोट ले भाई, गला घोटने से मुराद नुकसानी ख्वाहिशात को दबाना है, कुचलना है, ये मुराद है। हजारों महो खुर्शीद तोड़ डाले हमने, ख्वाजा साहब को एक और शेर है, हजारों महो खुर्शीद तोड़ डाले हमने, माह महो खुर्शीद यानी चांद और सूरज, यानी चांद सूरज जैसे हसीन जो चेहरे थे हमने सबको तोड़ दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, दिल पे गम हसर गमे हसरत उठा लिया, ख्वाहिश थी लेकिन उसको कुचला। फिर हुआ क्या उसके आगे, हजारों महो खुर्शीद तोड़ डाले हमने, तब कहीं जाकर रुखे जेबा दिखाया उसने, तब कहीं जाकर रुखे जेबा दिखाया उसने, कि अल्लाह पाक ने बाद में अपने जलवे दिखाए, बाद में अपना कुर्ब दिया, पहले तो भाई हमने ये सारी तकलीफें उठाई, ऐसे नहीं हुआ, पत्नी लातादाद हजारों लाखों मोह खुर्शीद हमने तोड़ डाले, यानी हसीनों के चेहरे हमने देखे नहीं, दिल को तोड़ लिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं टूटने दिया। उसके बाद अल्लाह ने अपने कुर्ब के जलवे, अपनी मोहब्बत और अपनी कुर्ब की मस्तानी और जरानी अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। तो जो दिल जो है इस पर ध्यान रखना है, क्या मतलब कि हलाल मजे करने, बीवी तक आदमी महदूद रहे भाई, खाए पिए घूमे फिरे, मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि दिल को गैरुल्लाह से पाक करने के चक्कर में इंसान हलाल मजे छोड़ दे, नहीं। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह शायद फरमाते हैं, उस दौर में खूब खाओ, थोड़ा सा भाई बीमार ना हो जाए आदमी, थोड़ा सा कम खा ले, मतलब ये क्या आजादी, इतना खाना खा लो भाई, खूब खाओ और खूब हंसो, खूब हंसो, खूब सो, तीसरी चीज खूब सो, खूब खाओ, खूब हंसो बोलो और खूब सो, ये है फरमाया। और चौथी चीज से खूब गुनाहों से बचो, खूब गुनाहों से बचो। तो क्या होगा, उसने फरमाया ये आजकल के दौर का शाही सुलूक है, शाही सुलूक, ये हंसते हंसते खाते पीते मस्ती करते करते सोते सुलाते अल्लाह के कोर्ट तक पहुंचाओगे, बस खूब गुनाहों से बचो। देखिए ये पुराने दौर के मुजाहिदात थे, कम सोना, कम खाना, कम सोना और कम खाना और ज्यादा रोना, ये पुराने दौर के मुजाहिदात थे, क्योंकि लोग उस वक्त ताकतवर तगड़े बहुत हुआ करते थे। मैंने फरमाया अगर आजकल के दौर में कोई पुरानी बुजुर्ग की किताबें पढ़ के अमल करेगा बगैर सोबत के, तो वो पागल हो जाएगा, चकरा के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो मौजूदा जो शेख हो उसकी सोबत में रहो। अब जैसे कोई बोले यार आजकल तो ऐसी, हजरत वाला के अल्फाज है कि आजकल तो ऐसी फटीचर किस्म के और नाकाबिल रेफरेंडम शेख होते हैं अल्लाह वाले, आज कहाँ ख्वाजा ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जैसे बुजुर्ग, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जैसे बुजुर्ग उस मुकाम के, तो मैं तो भाई जाता ही नहीं, मैं तो उनकी किताबें पढ़ूंगा और उस पर अमल करूंगा। तो अगर कोई उन बुजुर्गों की किताबें आज पढ़ के उस पर अमल करना शुरू करेगा तो वह फरमाते थे मर जाएगा या खुदकुशी कर लेगा। वजह क्या है कि वो उस दौर के वलीउल्लाह थे, तो उनकी जो आमाल जो उन्होंने अपने मुरीदीन के लिए बताए थे वो उस दौर के हिसाब से थे। 700 साल पहले के लोगों के दिल दिमाग जिस्म उनके आते उनका पेट उनका मैदा उनके दिमाग उनकी आंखें उनके आसाब कुछ और थे, तो उस हिसाब से वजीफे लिए थे। उस जमाने में बताते हैं मशायख के 15-15 हजार जिक्रुल्लाह बताया जाता था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह 20-20 हजार रुपए एक दिन में। और हजरत मौलाना शाह अली थानी साहब रहमतुल्लाह से पहले उन तक तकरीबन ये 5000 तक पहुंच गया था कम होते होते, और फिर उसके बाद ये होते होते 5000 से अब ये 100 के ऊपर हजरत वाला रहमतुल्लाह के उसमें आ गया था। तो 100 कहां, 25000 कहां, 100, क्योंकि वो अब पहले वाले लोग नहीं है। अगर आजकल के दौर में कोई सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के वबाय पड़ेगा 25000 तादाद करके, तो दिमाग उल्टा हो जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, गर्म हो जाएगा, दिमाग में खुश्की बढ़ जाएगी, डिप्रेशन का मर्ज बढ़ेगा, पागल हो जाएगा वो। तो इसलिए हजरत ने फरमाया कि जब जान बचाने का मामला होता है तो तुम हकीम अजमल के पास नहीं जाते कि यार अब तो हकीम और डॉक्टर सही रहे नहीं, मैं तो हकीम अजमल से इलाज कराऊंगा, वो तो कब्र में सो गए, तो कब्र से कोई इलाज कराएगा हकीम अजमल के, तो कहेंगे यार वो तो चलेगा, अब जो मौजूदा डॉक्टर कोई हकीम होगा मैं तो उसके पास जाऊंगा, वही बात है, फायदा तो जिंदा डॉक्टर या हकीम से होगा, लेकिन फरमाया अल्लाह के मुकाम कुर्ब के लिए जो है तुम कब्र परस्ती करते हो, जिंदा मशायख और अल्लाह वालों को तुम अहमियत नहीं देते। फरमाया कब्र से थोड़ा बहुत फैज मिल जाता है, रहनुमाई मिल जाती है, वहां पे जाने के लिए आदाब होते हैं, मना नहीं है, लेकिन फरमाया याद रखना जो इसलाह होती है हमेशा जिंदा शेख से होती है, इसलाह हमेशा जिंदा शेख होती है। मरहूम कोई अपना कोई वली भी हो तो वो भी इसलाह नहीं करता, कोई इंतकाल शुदा किसी का शेख और इंतकाल हो जाए तो इसलाह का अमल मौकूफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ वो अलग बात है, मोहब्बत का रिश्ता और फैज का रिश्ता जारी रहता है कब्र से भी मुरीदीन के लिए, लेकिन इसलाह आपको शेख के इंतकाल के बाद दूसरे शेख के लिए लाजमी है, उसकी इत्तिबा और उससे बैत, ताकि वो सिलसिला जो है वो तकवे का और शरीयत का उसमें बका कायम रहे, बका भी रहे और इत्तिबा भी रहे, ताकि उसमें बाकी भी रहे जो पिछले शेख से जो माल मिला है, फिर उसमें तरक्की भी रहे, बका भी हो और इत्तिबा भी हो। तो इसलिए दूसरा शेख किया जाता है, ये उसूल में से जिससे मुनासबत हुई है शेख के बाद। अल्लाह, तो ये जो दिल है ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो हम लोग देखें कभी रात और उसका ये उसका टटोलने का चेक करने का भी तरीका है दिल का, कि जब इंसान कभी तन्हाई में बैठे और मुराकबा करे आंखें बंद करके, दरवाजा बंद करके, मोबाइल साइलेंट पे करके, और फिर देखे कि उस कौन सा ऐसा गुना है, आंखें बंद करके सोचे कि जिसको उसकी तरफ बहुत मिलान रहता है। मिलान होना गुना नहीं है, लेकिन चेक करने के लिए अगर बहुत शदीद किसी को किसी तरफ गैरुल्लाह दिल में बसा हुआ है, यानी इसको दिल किसी गुनाह की तरफ बहुत ज्यादा लपकता है और चाहता है कि मैं इस तरफ ज्यादा तवज्जो दूं, ध्यान दूं, बस उसको उसकी बुद्धि पकड़ ले उस गुनाह की, मिलान तो होना बुरी बात नहीं, बल्कि इस मिलान से तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। शर्त ये इस मिलान के ऊपर अमल नहीं करना है। अब दिल चाह रहा है मोबाइल पे इंसान कोई देखता है गंदी फिल्में देखो, दिल चाह रहा है, तन्हाई भी घर में कोई है भी नहीं, मोबाइल भी साथ है, बस दो मिनट लगेंगे आगे, बस मिलान है ना। मिलान क्यों भेजते हैं ये नफ्स और शैतान, क्यों रखे अल्लाह ने, इसी के जरिए तो वलीउल्लाह बनता है, इसी के जरिए तो वलीउल्लाह बनेगा। क्या मतलब कि भाई नफ्स के तकाजे पैदा हो, ख्वाहिश गंदी पैदा हो, फिर अल्लाह के हुक्म की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दे, गंदे ख्यालात की, तो उससे अल्लाह के अनवारात की बिजली पैदा होगी, ताल्लुक मालना की बिजली पैदा होगी, निस्बत मालना का मोती कल्ब के अंदर आ जाएगा, कि नफ्स के गंदे तकाजों पर अमल नहीं किया। तो गंदे तकाजे होना लाजमी है, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, गुनाह के गंदे तकाजे क्यों उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं। अरे भाई जब आग ही नहीं होगी तो बिरयानी पकेगी कहां से, पकेगी अगर फला फरमाते हैं ना, आग होगी और बिरयानी पकेगी तो सारे मसाले होंगे तो गलेगी तो उसी चीज से ना, आग तो कंपल्सरी चीज है भाई। तो हमें तकवे की बिरयानी मुत्तकी किसे कहते हैं, मुत्तकी की तारीफ ही यही है कि उसके अंदर दिल में उसके गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, गंदी ख्वाहिशात उठती हैं, लेकिन जो मुत्तकी लोग होते हैं उस पर अमल नहीं करते, अमल ना करने से दिल पर झटका लगता है और उस झटके से विलायत की बिजली का नूर पैदा होता है। तो भाई तकवे के लिए तो गंदे ख्यालात होना, मर्द होना और शहवत परस्त होना तो लाजमी है, मसला समझने तो जो खाली नफ्स के गंदे तकाजों से घबराना नहीं चाहिए, ये तो हमारी आजमाइश के लिए और ऊंचा उड़ाने के लिए आते हैं गंदे ख्यालात। आम बेवकूफ लोग उस पर अमल कर लेते हैं तो क्या हुआ कि मुकाम असल की तरफ चले जाते हैं और नीचे की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह वालों को वक्त से है जो भी गम मिला उसे गमे जाना मिला दिए बना दिया। अल्लाह वालों का हाल क्या होता है, जो भी वक्त आया उसे वसवसा मौला बना दिया, बस उसको अल्लाह की तरफ ले गए, तोड़ फोड़ दिया उन वसवसों को, शैतान भी फिर भाग जाता है। लेकिन भाई ये जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए, मामूली बात नहीं होती है। तो दिल फट जाता है, आंख से आंसू निकल आते हैं बार दफा इस तकलीफ से, मुजाहिदे की तकलीफ से, उसके बाद फिर अल्लाह पाक अपना प्यार अता फरमाते हैं। इश्क की जिल्लत भी इज्जत हो गई, अदर साहब का शेर है, इश्क की जिल्लत भी इज्जत हो गई, ली फकीरी बादशाहत हो गई, ली फकीरी बादशाहत हो गई। एक तुमसे क्या मोहब्बत हो गई, एक तुमसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से ही मुझको नफरत हो गई। ख्वाजा साहब के बड़े प्यारे इशार थे, जब अल्लाह से सही ताल्लुक पैदा हो जाता है और गैर अल्लाह दिल से निकलने लगता है तो फिर चुपके चुपके अल्लाह पाक ड्रॉप बाय ड्रॉप अपना प्यार अता फरमाते हैं। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों कह रहा हूं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह एकदम से अपना प्यार अता फरमा दे दिल फट जाए, मौत वाक हो जाए। अल्लाह की बात बहुत बड़ी होती है, अल्लाह को पता है मेरा बंदा कमजोर है, मेरा जो बंदा है वो कमजोर बंदा है, तो उसके अंदर तहमुल नहीं है, उसके अंदर तहमुल नहीं है। अगर एकदम से मैंने ज्यादा अपनी तजल्लियात इसके ऊपर डाल दी तो उछलना शुरू हो जाएगा, ये सर पीट के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अल्लाह को पागल नहीं बनाना अपने बंदों को, उसी अल्लाह पाक तदरीजन थोड़ा थोड़ा प्यार आता फरमाते, थोड़ा थोड़ा। जैसे एक जानने वाले हैं, कौन है क्या है वो बहस नहीं है, बारह एक है साहब, उनको एक बार आप सलम की ज्यारत में होती रहती थी, तो ज्यारत बीच में बंद हो गई, बहुत रोई पीटे, अरे में चस्का लग गया, चस्का पड़ा हुआ था, आदत थी। वहां से जब मदीने पाक से प्याम रसानी जब खत्म हो गई तो बहुत रोए, बहुत रोए, अल्लाह क्या खता हो गई कि अपने महबूब की तूने ज्यारतें बंद, और बातचीत कभी कभार हो जाती थी, हो नहीं रही। तो मेरे गैबी आवाज सोते में जब रात में सोए कि इसने तुम्हें कर दिया गया मामला तुम्हारा बंद, कि अगर तुम्हें ज्यादा अगर ज्यारतें कराई देंगे तो तुम मर जाओगी मोहब्बत, और हम नहीं चाहते तुम अभी मरो। आशिक जो होता है वो अगर ज्यादा महबूब का अगर वसल उसको मिल जाए तो वो फिर बेकाबू हो जाता है, वसल चाहता है ना भाई, इश्क तो वसल चाहता है, मिलाप चाहता है, मुलाकात चाहता है, और फिर उसमें बस भी नहीं करता, दुनिया भी मासूम भी कोई महबूब क्या, और तो दुनिया की पलीत मोहब्बत होगा यह हाल है, तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत को आप क्या समझ रहे हैं। बस यही कहता है कि इंसान के पास दम ही निकल जाए आज तो बचू ही मैं, तो अजीब एक कैफियत हो जाती है। बहरहाल तो ये इसके दूसरे मामला होते हैं। तो ये तदरीजन कतरा ब कतरा अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत दिल के अंदर डालते हैं, आप फसलों की मोहब्बत डालते हैं, और फिर उसको प्यार से आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। बस आंसू टपकने लगे बस समझ लें कि ये रस्ते पर आ गए। अगर कभी आंसू टपकने लगे अल्लाह रसूल की मोहब्बत में तो बस अलामाते जज्ब में से मजबूत बनेगा इंशाल्लाह, भले अगर गुनाहगार भी अगर रहता, लेकिन अगर आंसू टपकते रहते हैं उसके अल्लाह रसूल की मोहब्बत में तो समझ लें ये आंसू कबूलियत की रसीद है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ये अल्लाह का वली बनेगा, ये सही ट्रैक पर आ गया, सही उसको जज्ब मिल रहा है और ये सही रस्ते के ऊपर आ गया। तो बस दिल के ऊपर मेहनत के ऊपर बात हो रही है सारी, के दिल को पाक साफ करना है, क्योंकि नापाक नजिस गंदे दिल में अल्लाह पाक नहीं आते। ये हमारा दिल नहीं होता बल्कि ये बैतुल्लाह होता है, बैतुल्लाह, इसको मशायख बैतुल्लाह बोलते हैं, अल्लाह का घर है, ये हमारा दिल नहीं है। वजह क्या है, दलील सूफियों की बात नहीं है, हमारे प्यारे आकिद व जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नकल है अल्लाह के नबी फरमाए कि अगर मुझे तलाश करना हो मैं तुम्हें कहां मिलूंगा, तो बंदा मोमिन के टूटे हुए दिल के करीब देखना मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। कौन कह रहा है ये, नबी पाक आप अल्लाह पाक अपनी जगह बता रहे हैं रहने की, जहां तुम्हें मिलूंगा, बंदा मोमिन के टूटे हुए दिल के करीब देखना तुम मुझे वहां पाओगे। तो दिल कौन सा टूटा हुआ दिल, वही बात, गुनाहों से बचने में जब इंसान का दिल टूटता है तो अल्लाह पाक उस दिल को अपना बना लेते हैं और अपना उस दिल को प्यार अता फरमाते हैं। तो जो अल्लाह वालों के पास लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों के करीब अल्लाह ही तो रहता है, क्योंकि उनका काम ही दिलों को तोड़ना, इसलिए तो लोगों को सुकून मिलता है, इसलिए तो मजा आता है, ये चीज होती है। इस पर भी मुझे भी अपना एक शेर याद आया, तकरीबन 13-14 साल की उम्र का। तो अब हजरत की बात क्या बोले भाई, हजरत तो अल्लाह ने ऐसे बस क्या अल्फाज नहीं है हजरत के बारे में बोलने की, कि जो चीजें दिल में जब 12-13 साल की उम्र में जो ख्यालात आते थे, या बाद दफा अल्लाह पाक के फजल को अच्छा ख्वाब आता था, तो पूरा हजरत की तालीमात के ऊपर होता था। अब उससे हजरत का तो नाम भी नहीं सुना होता, न जानते थे ना उनकी कोई सोबत, और 12-13 साल तो बच्चे ही होते। लेकिन हैरान जब हजरत से ताल्लुक कायम के किताबें पढ़ी तो मैं तो रो पड़ा खुशी में, कहा या अल्लाह ये तो चीजें ख्वाब में आती थी, ये हजरत फरमा रहे हैं, ये क्या चीज है। तो यानी अजीब पता चला कि शेख भी हमारे माशाल्लाह पूरे इलामी थे। तो क्या शेर था 12-13 साल की उम्र का, कि दिल के बाजार में लगाई है दुकान हमने भी, दिल के बाजार में लगाई है दुकान हमने भी, अब देखते हैं टूटे दिल का कौन खरीदार होगा। माशाल्लाह। तो अब हमें पता ही नहीं था भाई उस वक्त ये हदीस शरीफ है कि बंदा मोमिन के टूटे हुए दिल के करीब अल्लाह ने फरमाया मैं रहता हूं। तो अब हदीस शरीफ नहीं पढ़ा थी ना, कोई दलील थी, बस बैठे बैठे आ गया शेर। अब ये फिर 20-25 साल के बाद इसकी फिर दलील मिली शेर के टूटे हुए दिल के करीब अल्लाह बसते हैं, अल्लाह उस दिल को सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, मुंतखब फरमा लेते हैं अपने कुर्ब के लिए, मोहब्बत के लिए। दिल के बाजार में लगाई है दुकान हमने भी, अब देखते हैं टूटे दिल का कौन खरीदार होगा। यानी बाजार में कोई टूटी हुई चीज बेचता है? कोई नहीं बेचता भाई, क्योंकि जो टूटी हुई चीज रखेगा वो हंसी है, पागल है, ना कोई खरीदेगा ना कुछ। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अब देखते हैं कौन खरीदार होगा उस टूटे हुए दिल का। हमने भी भाई दिल का बाजार लगा हुआ था, सबने अच्छे अच्छे साबुत दिल रखे हुए, जुड़े हुए सालिम। मैं इतना बेवकूफ हूँ टूटा हुआ दिल रख के बैठो? अब भाई टूटे हुए दिल को कौन पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि इसका खरीदार अल्लाह होता है। याफुसलम ने बताया 1400 साल पहले शेर में सवाल था कि अब देखते हैं कौन खरीदार होगा, रसूल अल्लाह ने फुसलम ने जवाब दिया, हदीस शरीफ है, 1400 साल पहले शेर का जवाब आ चुका है कि टूटे हुए दिल के खरीदार अल्लाह पाक होते हैं। तुम अपने दिल को तोड़ो, दुनिया नहीं खरीदेगी तुम्हारे टूटे हुए दिल को, अल्लाह खरीदार है उस दिल के, अपना कुर तुम्हारे दिल में अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। फिर इसकी तशरीह हजरत ने एक बार ये फरमाई, कोई आपका जानने वाला हो, दोस्त हो, अजीज हो, आपकी दावत करे, बेहतरीन खाने लगाए हो, उसने दस्तरखान बिछाए हो, खूब खुशबू उठ रही हूँ, तो अचानक आप दाएं बाएं देखें वहां मैयतें पड़ी हूँ, लाशें पड़ी हूँ कफन में, मुर्गा खाने टाइप की कोई जगह हो, खाने बेहतरीन रखे हो, तो आप बुरा मान जाएंगे मेजबान को, यार ये क्या तमीज है, वो अखलाक है, आपको समझना चाहिए, आप मुझे दावत के लिए बुला रहे हो, आपने मैयतें चारों तरफ रखी, अब इनकी मौजूदगी में मैं यहाँ कैसे बैठूं, कैसे खाना खा सकता हूँ, मुझे वहशत हो रही है। तो नाराज होकर आप आंसू उठ के चले जाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे। मतलब ये था मैं आ रहा हूँ, अगर खाने पीने की चीजें रखनी थी, मैयतें गलने फलने वाली ये लाशें नहीं रखनी थी, तो जब हम इंसान होकर नुकसान नापाक हो गए हमारे स्टैंडर्ड में मिजाज है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम क्या समझ रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ये भी हदीस शरीफ है, लोगो अल्लाह का सौदा इतना सस्ता नहीं है, अल्लाह का सौदा बहुत महंगा है। सूफियों की लोग बातें कहते हैं ना, ये भी हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद, अल्लाह का सौदा बहुत महंगा है, अल्लाह का सौदा इतना सस्ता नहीं है। तो अल्लाह पाक ताल्लुक मान ला ऐसे दिल को कैसे अता फरमा देंगे, फरमा देते जिन लोगों ने अपने दिल में हसीनाओं का गैरुल्लाह कल्ब के अंदर बसाया हो, और गलने फड़ने वाली लाशें जिनके दिल में बसी हो, जो लुंगी फिल्में मोबाइल पर देखते रहते हो, और तो उनके नाजायज ताल्लुकात हो, उसके बाद हरामकारी में लगे रहते हो, गुनाहों की हराम लज्जतें और पत्नी कितनी पलीदियों उनके दिल के अंदर हो, बदलवनियां करते रहते हो, उसके बाद वो क्या वो खुश होंगे, क्या वो इस बात की उम्मीद रखेंगे अल्लाह का उनको कर्ब मिले, अल्लाह का उनको कुर्ब मिलेगा? बेवकूफी, ये जिहालत है। अल्लाह की बात बहुत गयूर है, बहुत गयूर है। हम तो यहाँ लाशें पड़ी, हम कदम नहीं रखेंगे खाना खाने के लिए, जाएंगे भी नहीं अंदर, हमारा तो ये हाल, तो अल्लाह को हमने क्या समझा भाई? अल्लाह उस दिल को अपना मस्कन बनाएंगे, अपना कुर्ब अता फरमाएंगे? इतने तो तुमने गैरुल्लाह और गंद पलीदियां भरी है, तुमने हमें क्या समझा भाई? अल्लाह का नाम है सुभान अल्लाह, भी कहना अल्लाह पाक है, तो अल्लाह हर शिर्क से भी पाक है, अल्लाह हर गैरुल्लाह से पाक है, हर चीज से अल्लाह पाक है। अगर अपने दिल को पाक कर भी ले गैरुल्लाह से, तो भी अल्लाह की कीमत नहीं बनती। ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने छोटी सी एक दो चंद चीजें बोलनी, बस ये छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपना कुर्ब खुसूसी अता कर दूंगा। ये तो अल्लाह की रहमत की वजह से, वरना जान भी दे दो तो हक अदा नहीं होता, हजार जान हो, हजार जाने भी अल्लाह पे हम फिदा कर दें तो भी अल्लाह की वो कीमत नहीं बनती। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गलबा हाल में चीखते हो, कहते हैं नारा मार के, अल्लाह आपकी कितनी कीमत है, आपकी कीमत क्या है आपको पाने की? मेरी आवाज आई, दोनों जहां मुझ पर फिदा कर दो, दोनों जहां मुझ पर फिदा कर दो, ये है मेरी कीमत। बुजुर्ग फरमाते हैं फारसी के शेर में, उसका तर्जुमा ये कि अल्लाह दोनों जहां भी आप पर कुर्बान कर दो तो भी आप सस्ते हैं, अपनी कीमत और बढ़ाइए, अपनी कीमत और बढ़ाइए। तो ये अल्लाह की जो कीमत है कोई अदा नहीं कर सकता है। तो अल्लाह पाक ने आसानी के लिए कह दिया कि भाई दिल को गैरुल्लाह से पाक कर लो, सिर्फ मैं ही मैं रचा बस हूं, वो चीजें जो अल्लाह की मोहब्बत में आती हैं उनसे मोहब्बत करे, उससे अल्लाह का और कुर्ब बढ़ेगा। बीवी से मोहब्बत करे तो ये सोच के कि मेरी बीवी बाद में पहले अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने कुरान पाक में हुक्म दिया है आशरूनहुन्ना बिल मारूफ, मेरी बंदियां हैं, मैं ये सिफारिश कर रहा हूं तुमसे, इनके साथ भलाई से पेश आओ। तो आदमी ये देखे बीवी पे नजर पड़ेगी, अल्लाह ने कहा है मुझे इसके लिए कि भलाई के साथ पेश आ, अल्लाह की सिफारिश है मेरी बीवी के साथ, तो मोहब्बत तो वैसी होती है बीवी बच्चों से, लेकिन मजीद इस चीज को शामिल कर देगा तो मजीद डबल कुर्ब मिलेगा अल्लाह का। एक सच्चे वाकयात में से, एक बुजुर्ग थे, वो छुपे हुए बुजुर्ग थे, जंगल में कहीं रहते थे, एक शख्स था उसको दरिया पार करके कश्ती में जाना था, वो दरिया का वो किनारे की जगह थी, जरूरी बहुत ही जरूरी कोई काम से जाना था, लेकिन उस दिन कुछ हड़ताल थी कश्तियों की या कुछ मसला था, तो रोने लगा कि मुझे तो लाजमी जाना था, मेरा तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो अगर मैंने दरिया क्रॉस करके वहां नहीं पहुंचा। तो एक दो लोगों ने मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई इसका एक मैं जानते हैं बुजुर्ग है जंगल में रहते हैं, जाओ उनसे दुआ कराओ, तो वो कुछ दुआ करेंगे शायद तुम्हारी मुश्किल आसान हो। तो उनके पास गया वो और कहा कि हजरत दुआ कर दें और मुझे लाजमी पहुंचना है और कश्तियां वगैरह कोई नहीं चल रही। मैंने कहा ठीक है, दरिया के किनारे जब पहुंचो तो दरिया को मेरा नाम लेके कहना है कि उसने भेजा है जो कभी अपनी बीवी के पास नहीं गया हुर्मत के लिए। तो बड़ा हैरान हुआ, बाहर चला गया और उसने जो है वो ये बोल दिया दरिया को ये कहना, तो पैर डाल दिया उसने तो चलता चला गया, दरिया पार कर गया। तो बहुत जबरदस्त को मजा आया, इसी तरह आ भी गया। होते होते ये बात मशहूर हो गई, गांव में फैल गई, सब जगह फैल गई, उसकी बीवी को भी पता चल गई, उनकी बीवी बच्चों को। अब जो लोग थे जो वो फिर अजीब अजीब बातें करने लगे कि यार ये बच्चे किसके हैं, मैं तो कोई बीवी के पास ही नहीं गया। अब बीवी को पता चला तो रोने लगी और गुस्से में फट पड़ी शौहर के ऊपर, अरे कंबख्त बुड्ढे तूने मुझे उस मोर में बदनाम कर दिया, बहुत नाराज हुई, ये तुमने क्या कहा कि वो तुम्हें भेज रहा है जो कभी अपनी बीवी के पास नहीं गया, और फिर ये बच्चे कहां से आ गए, तो तुमने तो मुझे बदनाम कर दिया, मुंह लगाने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो फिर समझाने लगे कि देखो मेरा मतलब तुम समझी नहीं, मैं उसकी बर्बाद भी कर दूंगा लोगों को, मतलब ये है कि मैंने उसको कहा था कि उस शख्स ने तुम्हें भेजा है दरिया, मुझे रास्ता दो कि जो कभी अपनी ख्वाहिशात नफसानी की वजह से अपनी बीवी के पास नहीं गया, मैं हमेशा जब भी तेरे पास आऊं अल्लाह की रजा के लिए पहले आया हूं, अपने नफ्स को मैंने बाद में रखा मुकदम रखा, पहले अल्लाह के हुक्म को मुकदम रखा कि अल्लाह ने मेरे निकाह में दिए, मेरी बीवी है और इसका मुझ पर हक है, इसलिए अल्लाह पाक में पहले जा रहा हूं, मेरा नफ्स बाद में। तो पता चला कि वही बात, जो भी गम मिला उसे गम में जाना बना दिया। तो फिर अल्लाह ने उनको ऐसी करामत अता फरमा दी थी, नहीं तो उनको वो करामत नहीं मिलती अगर ये नहीं करते मामला को। अल्लाह खुश होते, खाना तो वैसे ही खाना है हमें, लेकिन आदमी ये सोच के अगर खा ले मैं खाना खा रहा हूं अल्लाह इसलिए ताकि ताकत आएगी तो अल्लाह नमाज पढ़ूंगा, कुरान पाक पढ़ूंगा, जिक्रुल्लाह करूंगा, अल्लाह इसलिए रोटी खा रहा हूँ चाहिए। तो भाई खाना तो वैसे ही खा रहा हूँ, भूख लग रही है जल्दी लगाओ खा गए सब भालू बन थे, तो भाई इसमें सवाब थोड़ी मिलेगा, लेकिन ये सोच के कर लिया कि भाई अल्लाह पाक तेरी इबादत अच्छी तरह से करूंगा, भाई इबादत नहीं खाएगा चकरा के गिर जाएगा, खड़े नहीं हो सकता नमाज में किसी चीज में, कोई इबादत का पता नहीं हो सकेगा। तो फिर ये खाना पीना भी इबादत और सवाब बन जाएगा। तो मतलब ये है कि हर चीज में अल्लाह को शामिल कर लिया करें, जायज चीजों में भी, तो उससे फिर नूर आला नूर बन जाएगा, सवाब बन जाएगा। तो ये जो गैरुल्लाह है ना, इसको दिल से उखाड़ना है जड़ से, और अल्लाह से दुआ मांगे, आंखें बंद करके मुराक़बा एक और है, कभी अल्लाह से बोले बातचीत किया करें, तराई में बैठ के बातचीत करते हैं, अल्लाह लोगों के सामने नहीं करना, लोग कहेंगे पागल हो गया पत्नी किस पीर के पास जा रहा। तो हर एक के सामने हर चीज करने वाली नहीं होती है। तो ये पांच दो चार पांच मिनट ये शुरू में आदमी कर ले तन्हाई में, मोबाइल साइलेंट पे करके दरवाजा बंद करके आंखें बंद करके अल्लाह मेरे सामने दुरूद शरीफ पढ़ के, अल्लाह अगर कोई गैरुल्लाह हो तो छुपा हुआ हो, और मैं समझ रहा हूँ मेरे दिल में कोई गैरुल्लाह नहीं है, तो अल्लाह अगर है कोई गैरुल्लाह छुपा हुआ जो तेरे और मेरे रस्ते का हिजाब है, अल्लाह उसको जाहिर फरमा दे। तो अगर सामने आ जाए तो बस, और दिल गवाही दे दे कि यही गैरुल्लाह है, बस उसको उस पर उसको फोकस करें, उसको टारगेट करें, उसको मारें निकालें, उसको हरी में अहमद तू अपने दिल का हरदम पासमा रहना, यही मुराद है कि बस उसको बाहर निकालें। उस हालत में जीना नहीं है, उस हालत में जीना नहीं है, क्योंकि गैरुल्लाह साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। अल्लाह ना करे अगर मरने का वक्त आ गया फिर तो गैरुल्लाह के साथ मरेंगे, हम फंस जाएंगे, जान निकलना मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करनी है कि बिल्कुल शराय सदर हो, हमारा सीना साफ हो, दिल साफ हो, सिवाय अल्लाह रसूल के कुछ ना हो। लेकिन अगर बाज लोगों ने कहा कि हमने आंखें बंद की गैरुल्लाह का तलाश किया, अल्लाह को ऐसी चीज हो तो शेख का चेहरा सामने आ गया, तो उसका जवाब ये कि ये गैरुल्लाह नहीं है, बल्कि ये भी अल्लाह की मोहब्बत का हम सफर रहबर का मामला है। तो ये गैर अल्लाह नहीं है, मतलब बस ये समझ लेगा दिल में अल्लाह ही अल्लाह है। अगर शेख का तस्वर आ जाए या कोई और नूरानी चीज सामने नजर आ जाए, काबूतुल्ला नजर आ जाए, रोमे रसूल नजर आ जाए, शेख का चेहरा सामने आ जाए, तो बस समझ लेगा मकसूद हासिल हो गया। और अकली तौर पर भी दिल नहीं मान रहा कुछ है दिल में गैरुल्लाह, कोई गुनाह की आदत नहीं, आदतन नफ़े आदतन दिल पाक महसूस कर रहा है। और जब आंखें बंद करके जो मुराकबा की तो उसके बाद भी नूरानी चीजें आ रही है सामने, तो बस समझ ले के कुछ भी नहीं उसके दिल में सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के ये। और दूसरी बात है कि इंसान को पता चल जाता है, पता चल जाता है कि मेरे दिल में गैरुल्लाह है या नहीं। गैरुल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह और रसूल के, अल्लाह और अल्लाह और हमारे दरमियान जो हिजाबात पड़े हुए, जो पर्दे पड़े हुए, इस चीज के गैरुल्लाह के हिजाबात पड़ गए, जलवे हट पर्दे हटते भी नहीं, साफ दिखता भी नहीं, छुपता भी नहीं। तो पर्दे हटेंगे कैसे, हिजाबात हटेंगे कैसे? जब गैरुल्लाह हटेगा, दिल जब पाक साफ होगा, फिर होता क्या है कि फिर दिल के जरिए से इंसान मुशाहदात करता है, दिल के जरिए से। आम हालात में तो आम इंसानों की आंखें मुशाहदात करती हैं, देखते हैं, लेकिन अल्लाह वालों के जो मुशाहदात होते हैं वो दिल के जरिए से होते हैं। आंखें बंद करके दिल की तरफ मुतवज्जो होते हैं तो दिल उनको कुछ और दिखाता है। अजीब बात है ना भाई, देखना है तो आंखें खोल के हम देखते हैं ना। लोग कहते हैं ना महाभारत में, यार आंखें खोल के चलो, आंखें खोल के देखो क्या लिखा हुआ है, क्या चीज सामने, आंखें खोल के देखो। लेकिन अक्सर अल्लाह वालों का हाल हमने देखा, हजरत वालों को भी हम देखते थे, हजरत से कुछ पूछो को बात हो तो हजरत आंखें बंद कर लिया करते थे और फिर बताते थे। अजीब बात है ना भाई, हम तो देख के बता रहे हैं चीजें, अल्लाह वाले आंखें बंद करके बता रहे हैं। तो ये क्या चीज है? वो आंखें बंद करने का मकसद है वो दिल की तरह मुतवज्जे होते हैं, तो फिर दिल उनको कुछ और दिखाता है, वो दिल फिर जवाब देता है। इसी चीज को सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते थे कि तुम अपनी आंखों की बिसारत को अल्लाह पर कुर्बान कर दो, यानी ना मेहरों को फिर नजरों की हिफाजत करो, अल्लाह पर कुर्बान कर दो अपनी बिसारत को, अल्लाह पाक तुम्हें दिल की आंखें अता फरमाएगा। ये कौन कह रहा है? रसूल आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक तुमको दिल की आंखें अता फरमाएगा, लेकिन पहले अपनी दो आंखों को, अपनी बिनाइयों को अल्लाह पर कुर्बान करना पड़ता है, गैरुल्लाह से बचाना होता है। बस खवातीन समझती शायद इस तरह के बयान सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं, भाई खाली मर्दों के लिए नहीं, इसमें औरतें भी शामिल हैं। तो खवातीन भी दिल को गैरुल्लाह से पाक साफ करें, गुनाहों से पाक साफ करें, क्योंकि खैर और शर नफसानी ख्वाहिशात सब में, मर्द हो औरत हो कोई भी हो, सब में होती। तो ये दिल की जो कैफियत होती है ना, दिल इसको पाक साफ करना है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, अहदीस मुबारका में नकल है कि दिल पर स्याही भी लगती है, दिल पर जंग भी लगता है। क्यों कह रही है कि क्यों दिल 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 चल रहा है और जंग भी आ रहा है, स्याही भी आ रही है दिल के ऊपर? और अल्लाह के जिक्र से हर चीज की, दिल की मजाई की चीजें होती है, असलम फरमाया हर चीज की सफाई की चीजें होती है जिससे तुम चीजों को साफ करते हो। तो दिलों की सफाई की जो चीज है वो अल्लाह का जिक्र है। तो फरमाया दिल ही तो गंदा हो जाता है ना, तो फरमाया जिक्रुल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से दिल मंजना शुरू हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो दिल जब चमक जाता है तो फिर रोशन जमीर हो जाता है, फिर कुर्ब खुदाबंदी का एहसास होने लगता है। तो दिल पर सारी मेहनत है, आ रही है, दिल को फोकस करें, दिल को टारगेट करें बजाय 50 चीज को। जब दिल पाक साफ होगा तो फिर गीबत नहीं होगी। जब दिल मुजल्ला मुसफ़ा होगा फिर बदनफरी नहीं होगी, फिर मोबाइल नहीं देखेगा आदमी। दिल बदल गया। एक बुजुर्ग थे, उनका भी तो ये शेर था ना, मेरा दिल बदल दे, हवाओं हिस्स वाला मेरा दिल बदल दे। क्या था वो भी तो दिल की बेचारे बात कर रहे थे कि अल्लाह मेरा दिल बदल दे, हवाओं हिस्स वाला दिल बदल दे। तो दिल पर तो सारा गेम है, सारी कहानी दिल के ऊपर है। अल्लाह, और ये दिल बदलता कैसे? अब इस पर मेहनत किस तरह से होगी? वही तरीका, पुराने पाक की तलावत है रोजाना पाबंदी के साथ, जो मशाइख ने जो हमारे जो असफार बताए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के, अल्लाह अल्लाह के, और खवातीन का अल्लाह अल्लाह नहीं बल्कि सुभान अल्लाह पढ़ना होता है, खवातीन को आवाज से पढ़ना है, तसव्वुर के साथ पढ़ना, फिर उसमें मुराकबे भी है कि तसव्वुर करना है कि मेरी ला इलाहा जो है सातों आसमान को चीरती है, अल्लाह से मुलाकात कर रही है, और अल्लाह अल्लाह का तसव्वुर करना है, अल्लाह का नूर एक सुकून के जरिए मेरे कल्ब के ऊपर आ रहा है, और अल्लाह अल्लाह पे ये तस्वीर करना है, मेरी जबान से भी अल्लाह अल्लाह निकल रहा है और मेरे दिल से भी अल्लाह अल्लाह निकल रहा है, मेरे दिल के अंदर एक जबान है, फिर दिल की बात आ रही है, ये दिल के अंदर एक जबान है, जबान के दिल की जबान से भी अल्लाह अल्लाह निकल रहा है, जहां मैं बैठ के जिक्रुल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह करो दो दीवार से, उस जगह से और दाएं बाएं से और शजर से हजर से चारों तरफ से अल्लाह ही अल्लाह निकल रहा है, हल्का ध्यान काफी। ये फिर जबान के साथ जिक्र जहरी के साथ ये जिक्र खफी भी है, ये मुराकबा भी है, दिल का जिक्र भी चल रहा है, यानी एक तरफ जबान चल रही है और दूसरी तरफ हमारा दिल भी जिक्रुल्लाह कर रहा है तसव्वुरात के साथ। तो एक वक्त में दो जिक्र हो रहे हैं, जिक्र कल्बी और जिक्र लिसानी। ये सारे अब ये नूर बना, नूर बना, अब नूर बनेगा इससे होगा क्या, नूर बन गया, जब नूर बन गया तो स्टीम बन गई, नूर बन गया स्टीम बन गया, कोशिश करनी है जो ये अल्लाह के जिक्र में जो स्टीम बनी है उसका अखराज ना हो, इसकी लीकेज ना हो। तो जब जिक्रुल्लाह करके मोबाइल उठा के बदनजरी नहीं करनी, मोबाइल उठा के म्यूजिक नहीं सुननी, नहीं सुनना, तो फिर क्या होगा कि वो जो नूर की जो स्टीम बनी है वो निकल गई कानों के जरिए, आंखों के जरिए, तो फिर होगा क्या, जहां इंसान पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा वो, दिल तक मामला वही भाई जमा होने दो दिल में वो नूर। अब थोड़ा जब नूर जमा रहेगा फिर आप बाहर गए, तो खातून सामने से आ रही हूं, अब इसको उल्टा भी कर ली, तो बाहर गई को खवातीन सामने से कोई साहब आ रहे हैं, खवातीन को भी तो नजरों की हिफाजत करनी है ना, तो बाहर कोई साहब सामने से आ रहे हो तो फिर क्या करना, नजरों को नीचे करना। अब हुआ का जो जिक्रुल्लाह का नूर हो गया, अब नजर बचाने का नूर उसमें ऐड हो गया, आ रही है सुन में। उसके बाद क्या हुआ, कहीं से पार्टी में बुलावा है, शादी है, मूवी तस्वीर गैदरिंग है, आपको आना है, आप नहीं गए, नहीं गए या नहीं गई जो भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब नूर में झटका खाया, लानत मलामत सही लोगों ने रिश्तेदारों में बातें बनाई, उसके बाद क्या हुआ, नूर और जम गया और बन गया। अब क्या हुआ कि कुरान पाक अल्लाह का जिक्र का नूर, नजरों की पाबंद का नूर, और उसके बाद उस गैर शरी तकरीबत में नहीं गए, क्योंकि अल्लाह रसूल ने मना किया ऐसी मजलिस ऐसी जगह जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो मत जाओ। तो फिर अभी तीसरा नूर उसके दिल के अंदर और शामिल हो गया, प्रेशर स्टीम नूर की और बढ़ गई। इसी तरह आदमी अमाल तो कर रहा है कुरान जिक्र अज़कार के साथ में, गुनाह भी नहीं कर रहा होता, उससे स्टीम बनेगी, उससे नूर बनेगा, दिल की मजाई सफाई शुरू हुई। अब यही बंदे का तसलसल है, यही चल रहा है मुसलसल, अब इतना प्रेशर बन जाएगा तो प्रेशर अनवारात फिर किस तरह से निकलेंगे, अब आंसू टपकने शुरू होंगे, ये स्टीम इतनी ज्यादा बन गई है, अब वो जगह चाह रही है निकलने के लिए, तो फिर क्या, आंखों से आंसू निकलेंगे, आंखों से आंसू क्यों निकलना है, अल्लाह रसूल के इश्क में मोहब्बत में कैफियत क्यों बन रही है, क्योंकि अखराज भी जरूरी है भाई, ज्यादा अनवारात बन गए तो फिर आदमी को आलम बरसक खुल जाएगा, जीते जी सूरत मिसाली सामने आ जाएगी उसके, तो फिर अल्लाह पाक बैलेंस रखने के लिए उसको फिर मोतदिल रखने के लिए फिर आंसुओं का अखराज करते हैं, अपनी मोहब्बत उसको अता फरमाते हैं, फिर और दूसरी चीजें हो जाती हैं, फिर एक मामला नफ्स और शैतान पीछे लगे हुए होते हैं, तो फिर अनवारात मजीद कम करने के लिए कभी इंसान से वो गुनाह हो जाता है, फिर एहसास हुआ अनवारात की कमी हुई, तौबा करी, अनवारात फिर वापस आ गए, फिर चलना शुरू कर दिया। इसी चीज को शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, हमने तय की इस तरह से मंजिलें, यानी अल्लाह के कुर्ब की, हमने तय की इस तरह से मंजिलें, चले गिरे उठे फिर चल पड़े, मायूस की मायूस होने की राह नहीं है, मायूस होने की राह नहीं है, गिर जाओ तौबा करो उठो फिर चल पड़ो, गम की क्या बात है, जब तक सांस है तब तक आस है। तो ये तरीका है दिल की मजाई का, दिल गैरुल्लाह से किस तरह से पाक हो जाओ, पाक होगा, जान लड़ा के अमाल करने हैं जिससे नूर जनरेट होगा, नूर बनेगा, कुरान जिक्र अज़कार सारी चीजें शेख की मजलिस सोबत उससे सब नूर बन रहा है। अब नूर बन गया, नूर दे दिया अल्लाह ने, अब ये जो मेंटेन जो रहेगा वो नूर कब रहेगा, इसमें गुनाह नहीं करना। अब इसमें जो मेंटेन वेल मेंटेन कैसे रहेंगे, वही वो अनवराक हमारे कि जब हम गुनाह से बचने का गम उठाएंगे, नहीं तो अगर समाज देंगे सारी जिंदगी इसी में गुजार दोगे, अनवारात बढ़ाते रहोगे निकालते रहोगे, अनवारात बनाते रहोगे निकालते रहोगे, तो होगा क्या, 50 साल में भी तरक्की नहीं होगी, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहोगे, ऐसी आदत में मर जाओगे, क्या अल्लाह का वली नहीं बन रहा, नहीं बनना, माफ तो कर देते अल्लाह तौबा से, मसला वो नहीं है, 5 मिनट लगेंगे रो के कहते अल्लाह माफ फरमा दे, सब माफ तो फरमाए, लेकिन तरक्की तो नहीं हुई ना, तरक्की होती है स्टीम बनने से, अनवारात के जमा होने से, यानी हमसे बर्दाश्त नहीं होता दूर, जरा सा तकवा बर्दाश्त नहीं होता, एक हफ्ते भी अगर कोई तकवे से रह रहे तो घबराहट घुटर होने लगती है कि यार कि मेरी मौत ना वापी हो जाए तकवे की वजह से, तो फॉरन बैलेंस करो यार, बस कुछ करो, हराम काम करो, घबराहट हो रही है। तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब ये है कि बढ़ाना है ना सिलसिले को, इस सिलसिले को बढ़ाना है, फिर देखें कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूह ऐसा हमें महसूस होगा जैसे हमारी रूह अर्शे आजम का तवाफ कर रही है। इसी कैफियत को हमने फरमाया था कि बयान अदना सा अगर फैज है पीरे मुहा कर दू, यानी अपने शेख का फैज, बयान अदना सा यानी मामूली सा, यानी इतने शेख से फैज मिले बहुत ही मामूली सबसे छोटी चीज फरमा रहे बयान अदना सा अगर फैज है पीरे मुहा कर दू, सजदे में सर रख दू जमीन को आसमां कर दू, सजदे में सर रख दू जमीन को आसमां कर दू। क्या मतलब कि जब अल्लाह से, क्योंकि अगर अल्लाह से कोई दुआ मांगने पर आ जाऊं मैं, और जब सजदे में सर रखूंगा तो लेके उठूंगा, फिर जमीन को आसमां कर देने का क्या मतलब कि फिर इंशाल्लाह अल्लाह मेरी आहो भुका से आहो फुका से जरूर मेरी झोली में अपनी करम से अपनी रहमत से मुझे भी अता फरमाएंगे, मुझे महरूम नहीं रखेंगे अल्लाह पा। तो ऐसा ताल्लुक मुझे हासिल हो चुका है, तो ये चीज होती है। तो फिर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है बंदे की बस। और फिर ऐसे ही लोगों के बारे में आपस ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बाद बंदे ऐसे हैं जो अगर किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है। ये वही लोग तो होते हैं जिनका दिल भरा हुआ होता है नूरानी स्टीम से, गुनाह ना करने की वजह से नेक अमल कर रहे होते हैं, उसके अनवारात अलग होते हैं, और तकवे से जो रह रहे होते हैं गुनाहों से बचने का जो गम उठा रहे होते हैं उसके अनवारात नूर अलग होते हैं, तो वो नूर आला नूर चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता जो सिर्फ नेक अमाल जाहिरी अमाल करते रहते हैं और दबा के हराम काम गुनाह भी करते रहते हैं, उनकी तरक्की नहीं होगी, दीनदार कहलाएंगे और सब कुछ है, लेकिन उनको वो मुकाम हासिल नहीं होगा जब तक गुनाहों से बचने का गम नहीं उठाएंगे। दो अहकाम आते हैं अल्लाह के, करने वाले काम और एक है ना करने वाले काम। करने वाले काम नमाज रोजा कुरान जिक्र अज़कार, ना करने वाले काम वो भी लोग कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा बदनामी नहीं करो लोग कर रहे हैं, गैर शरीफ तकरीब में नहीं हो लोग जा रहे हैं, मोबाइल म्यूजिक गाने वगैरह नहीं सुन लोग, ना करने वाले काम वो भी कर रहे हैं, इस वजह से बहरूम में जहां है वही के वही पड़े हैं। तो इसलिए भाई जब इतनी मेहनत कर ली, आधा 50% हमने रास्ता तय कर लिया, नेक अमाल कर रहे हैं, तो उसको बचाना भी तो है। अगर फरमाते अगर किसी की 2 लाख सैलरी हो और पूरी 2 लाख रुपए उड़ा दे तो बेवकूफ आदमी कहलाएगा। अगर फरमाते मियां बचाया कितना, 2 लाख अगर कमा रहे हो और कितना ही खर्चा हो, कोशिश करो 50,000 रुपए महीना तो बचाओ कम से कम। तो जितना कमाना जरूरी है उतना बचाना भी जरूरी है। तो फरमाया जब नेक अमाल कमा लिए तब उसको बचाओ, नेकियों को खराब क्यों करते हो गुनाह करके हराम काम करके। बस जो भी बोला कि अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमारे सबको कुरूब को गैरुल्लाह से पाक कर दे, और बस अल्लाह ही अल्लाह हमारे दिल में कर दे, और वक्त आखिर भी जबान पे हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही जारी हो। आखिर में व्रत वाला इंद्र शाह फरमाते थे 5 अमाल बयान कर दिए गुरु, वलीउल्लाह बनाने वाले 5 अमाल छोटा किताब से दिए थे, जो भी इंशाल्लाह 5 अमाल कर लेगा अल्लाह पाक उसको अपनी दोस्ती अदा फरमाएंगे, वलीउल्लाह बना देंगे, और इन 5 अमाल का ताल्लुक फराइज और वाजिबात से, तो कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का एहतमाम करें, ये जरूरी है। नूरानी कायदे से ही पढ़ने की शिकारी साथ से तो 1.5-2 महीने की मेहनत है, इंशाल्लाह कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा। और दूसरा एक मुट्ठी दाढ़ी रखना तीनों तरफ से वाजिब है, चारों इमामों का जमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं है, और मूछे बिल्कुल बारीक रखें, और ये दाढ़ी का बच्चा रखना भी वाजिब है, ये जो कहलाता है ये दाढ़ी बच्चा कहलाता है, ये बहुत से लोग इसको काट देते, तो इसको काटना नहीं है, ये दाढ़ी का हिस्सा है, इसको पूरा रखें, और ये बच्चा का बच्चा ही रहता है, ये बढ़ता नहीं है। तो वाजिब है, चारों इमामों को अजमाएं, मूछे बिल्कुल बारीक रखें, बड़ी मूछ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मैं उसकी शफाअत नहीं करूंगा, और मुनकर नकीरी जब कब्र में आएंगे तो गुस्से की हालत में आएंगे और कब्र में उसे अजाब दिया जाएगा, इतना सख्त मामला है बड़ी मूछ का। बड़ी मूछ का मतलब है होंठ के किनारे के ऊपर भी अगर चंद बाल आ गए तो ऐसी मूछ का रखना हराम है, और ये वही लागू होने का अंदेशा है, अल्लाह ना करे कि इस हालत में मौत आए। और बड़ी मूछ को देख के, और जो दाढ़ी मुड़े कुछ लोग आए थे, दो ईरान के दो सफी रहे थे, उस जमाने में ईरान में आग की पूजा होती थी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और दाढ़ियां मुड़ी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के उनको नागवारी से नफरत से मुंह फेर लिया। फिर आप से उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह से मुलाकात के नहीं आए, तो आपने इरशाद फरमाया तुमने ये शक्लें क्या बनाई हैं कि तुम दाढ़ियों को मुड़ाते हो और बड़ी बड़ी मूछें रखते हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह ने हमें हुक्म दिया है शक्लें बनाने का, दाढ़ियों को मुंडाओ और मुझे बड़ी बड़ी रखो। लेकिन आप फरमाए लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कतरवाओ। तो ये इतना जरूरी है दाढ़ियों की तरफ तवज्जा दें। और तीसरा मलमा अफर काबैनी में लगवाए फिर नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टकने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो मर्दों के लिए दो सूरतों में टकने खोल के रखना वाजिब है जब खड़े हों और जब चल रहे हों। और दूसरी हदीस शरीफ में आप इरशाद फरमाए नकल है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत ही नहीं रखते जो अपने टखनों को छुपा के रखता है, यानी मौत तक महरूम रहेगा अल्लाह की मोहब्बत से। एक सहाबी रसूल है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मजबूरी है, एक बीमारी की वजह से मेरी पिंडलियां सूख गई हैं, बिल्कुल पतली पतली हो गई हैं, तो मुझे शर्म आती है, तो इस मजबूरी की बिना पर क्या मैं अपनी पिंडलियों को छुपा लिया करूं, यानी टखनों को नीचे कर लिया करूं। आपने इरशाद फरमाया नहीं, टखने खोल के रखने तुम। सही है, कितनी अहमियत नजर आ रही है, इजाजत नहीं की उनको आप। और एक साहब थे, वो कंधे में कोई शाल वगैरह उस तरफ से उन्होंने डाली हुई थी, तो जब वो चल रहे थे तो वो जमीन से रगड़ती हुई जा रही थी वो चादर शाल टाइप की। तो आप ने नाराज होकर फरमाया उनसे, क्या मेरी हयात तेरे लिए नमूना नहीं है? ये सोचना चाहिए कि रसूल अल्लाह का, उन्हें नहीं कहा हमें कहा है कि मेरी हयात क्या तेरे लिए नमूना नहीं है? तो वो समझ गए कि क्या आप ने फरमाया। फौरन उन्होंने घबरा के अपनी चादर उठाई और उसको कंधे पे वापस डाला, यानी इतनी लंबी हो गई कि जमीन से टच दी जा रही है, टखने से नीचे तक जा रही है। और हशर वाले दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े लोगों को जहन्नम से निकाल रहे होंगे, अल्लाह की शान रहमत उरूज पर होगी, उस वक्त भी तीन लोग ऐसे होंगे जिन पर अल्लाह ना नजर करम करेगा, ना उन पर रहमत करेगा, ना उनको पाक करेगा गुनाहों से। हशर वाले दिन उनमें से एक वो होगा जो दुनिया में टखनों से पांचों को ऊपर रखता है। ठीक है भाई, नजरों की हिफाजत करें। चौथा मल, अल्लाह पाक कुरान पाक में हुक्म दे रहे हैं, कुल लिलमुमिन अबसारिहिम व याकुलू फुरूजहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और खवातीन को अल्लाह हुक्म दे रहा है आगे, खवातीन से भी आप कहिए कि अपनी बाज निगाहों की हिफाजत करें, शर्मगाहों की हिफाजत करें तमाम नामहरिम से। और हदीस शरीफ है, लामुन नाजिरा मंजूर है, अल्लाह लानत फरमा जो बदनजरी करे उस पर भी, और उस पर भी जो बदनजरी के लिए खुद को पेश करे। पेश करना यानी जो खवातीन जैसे बेपर्दा आ जाती हैं तमाम नामहरिम के सामने, कोई पर्दा वगैरह नहीं होता, तो उन पर लानत आ जाती है रसूल अल्लाह की। और वो लोग जो बदनजरी करते हैं दोनों पर, देखने वाले पर दिखाने वाली पर, दोनों पर लानत, किसकी? इमाम लंबी की। और लानत का मतलब है बोल रहे रहम अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो बंदा रसूल अल्लाह की बद्दुआ में आ गया बंदा या बंदी अल्लाह ना करे, तो फिर क्या होगा? चैन सुकून मिलेगा जिंदगी में? वही बात है ना, हमें अपना नफ्स प्यारा है, हमें अपना दिल प्यारा है ना, अल्लाह रसूल प्यारे नहीं है हर एक को भाई। बस ये हमारी बर्बादी, हमें अपना नफ्स, हमारा दिल, हमारी ख्वाहिशात, हमें ये प्यारी है। अल्लाह रसूल तो बहुत कम लोगों को प्यारे हैं। ऐ दिल तेरी मानू या खालिक दिल की मानू, ऐ दिल तेरी मानू या खालिक दिल की मानू, दिल के आगे सवाल रखा है। और पांच अमल दिल को बिल्कुल पाक साफ रखें, वही बात पांच अमल वलीउल्लाह बनाने, फिर दिल पे बात आ रही है। यालमु खायनात अलायूनी वमा तुफी सुदूर, अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को खूब अच्छी तरह देख रहे हैं। अमानत को उलट होती है खयानत, अमानतन आंखें दे रहा हूं मतलब ये खयानत मत करो, तुम्हारी नहीं है, मैंने दी आंखें, देखो कितने अंधे मैंने नाबीना पैदा किए। वह छड़ी लेके चल रहे होते हैं बेचारे, मोहताज होते हैं लोग, कोई हमें ये सड़क पार करा दे, हम माशाल्लाह से चारों तरफ देखते हुए चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, चाहूं तो तुम्हें अंधा भी कर सकता हूँ, कितने मादरजात मैंने नाबीना पैदा की, इनका मिस यूज मत करो आंखों का। या अलमू जानता हूँ खयानती तुम्हारी आंखों की खयानत को, वमा तो फिर सुदूर और सीनों के राहों को देख रहा हूं मैं, यानी एक तो तुम बदनजरी करते हो, मोबाइल पे गंदी चीजें देखते हो, उसके बाद दिल में गंदे ख्यालात पकाते हो, तो सजा की बात नहीं कि अल्लाह पाक डरा रहे, देखो मैं सब देख रहा हूँ। जैसे बाप बोले ना बेटा ये मत समझो मैं तुम्हें वॉश नहीं कर रहा, देखता हूँ सब देखता हूँ, लेकिन कुछ बोलता नहीं, उसको मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे सब पता है, डरा रहे हैं कि मैं एक्शन भी ले सकता हूँ। तो यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं आंखों को पाक रखो और दिल को पाक रखो। ये पांच छह मल है वलीउल्लाह बनाने वाला। शैतान वसवसे से डालता रहता है दिल में, वो एक अलग मामला, उसमें गुनाहगार नहीं होता, किसी जायज काम में लग जाए आदमी वजू कर ले, दस तरीके होते हैं, लेकिन जान बूझ के गंदे ख्यालात का दिल में लाना जमाना ये सही है। इससे वही बात चारों अमाल का अनवार आपका नूर कल से निकल जाता है, तो दिल को भी फिर आखिर में शैतान बड़ी, जब आदमी चार अमाल कर लेता है तो तो बड़ी कोशिश करता है उसको किसी गंदे वसवसों में डाल दूं, या गुनाहों में जो माजी के जो गुनाह इसने किए उनकी लज्जतों में उसको डाल दूं, उससे भी बैठे बैठे भी बर्बाद हो जाएगा इंसान, में गंदे ख्याल उसने पकाने शुरू कर दिए। वही बात के स्टीम बने, स्टीम प्रेशर बने, नफ्स को तकलीफ हो, शैतान को कहीं से जगह नहीं देनी है घुसने की। आखिर में सबसे कमजोर वार रहता है शैतान का कि इसको वसवसों मुब्तला कर दो गंदे, ये भी नहीं करने, फिर देंगे मौका, उसके बाद आना शुरू होता है। और खवातीन तीन, इसमें खवातीन के लिए कॉमन गुनाह है, कॉमन हमारे पांच में से तीन, एक तो कुरान पाक और नजरों की पाबंदी, दिल को पाक साफ रखना। अब दाढ़ी और टखनों से पैंचों की जगह खवातीन दो काम करने, शोहर की अताअत फरमाबरदारी अख्तियार करें जायज उमूर में, और दूसरा मल जो है वो शरीर पर्दे का एहतमाम करें, और इन पांचों माल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहां मुनासबत होगा ताल्लुक कायम करने, तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में पांचों माल की तौफीक हो जाएगी। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب كريم يا رحم الرحيمين يا الله جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے میں غلطی کمی بیشی ہوگی تو شان رحمت سے بخش دے معاف فرما دے اللہ، جو ہمارا مل بیٹھنا تیری درگاہ تیری خوشی کے لیے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہم سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ، ہم سب کے قلوب کو مجلہ مصفہ کر دے، ہمارے قلوب کو غیر اللہ سے تمام گناہوں سے پاک صاف کر دے یا رب کریم، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا رحم الرحمین، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی ہے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے یا اللہ، یا رحم الرحمین، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ، یہودیوں کو ان کے مددگاروں کو جلد از جلد ہلاک کر دے، تباہ برباد کر دے، سفارتی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، تمام امت مسلمہ کی ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، یا رحم الرحمین، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے ہمارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین کی، کل جنات کی، اللہ باپ اور میرے ساس سسر کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے صاحب نے رہائش کی نہیں کہا، ان کی رہائش کا مسئلہ نہیں ہو رہا، تو اگر اللہ قبر کو بہترین رہائش عطا فرما دے اللہم صلی اللہ محمد مولانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم